ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमपुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन कृपया आपके मोबाइल फोन बंद कर दीजिए। जिनके भी हैं साथ में आप दोबारा देखिए कि मोबाइल फोन बंद है या नहीं, और खुला है तो कृपया बंद कर दीजिए। तो इन दिनों में हम रासलीला तत्व इस विषय के बारे में चर्चा करते आए हैं और अनेक बातें हम बता चुके हैं। पहली बात कि रासलीला समझने की, सुनने की, टीका करने की कोई योग्यता होनी चाहिए, इस बारे में चर्चा हुई थी। दूसरी बात कि हमें यह जानना चाहिए कि जो रासलीला कर रहे हैं श्री कृष्ण वो स्वयं भगवान हैं और भगवान होने का क्या मतलब है। तीसरी बात, हम ये सुन चुके हैं कि श्री कृष्ण इस रासलीला के समय, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 29वें से लेकर 33वें अध्याय में पाया जाता है, वो केवल 8 वर्ष की थी। चौथी बात कि भगवान श्री कृष्ण की रासलीला गोपियों के साथ, ये इस भौतिक प्रकृति के अंतर्गत या महामाया शक्ति के अंतर्गत नहीं हुआ, बल्कि भगवान के धाम में जो अंतरंगा शक्ति विद्यमान है उस दिव्य शक्ति के अंतर्गत हुआ। इसलिए ये रासलीला इस संसार के नृत्यों की तरह नहीं है। और हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि ये भौतिक सृष्टि आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है, इसलिए जो आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंचा है वो इस भौतिक सृष्टि में निम्न श्रेणी का माना जाता है। तो श्री कृष्ण की गोपियों के साथ में लीला गोलोक वृंदावन में, परव्योम धाम में, ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु क्योंकि हम यहां भौतिक महामाया के प्रभाव में हैं, हमारी दृष्टि उल्टी होती है, इसलिए हम इस सर्वोच्च लीला को निम्न श्रेणी का समझते हैं। और अंततः कल हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह हमें जानना चाहिए कि रासलीला करने वाले श्री कृष्ण कौन हैं, उसी प्रकार से ये भी जानना चाहिए कि रासलीला करने वाली गोपियां भी कौन हैं। तो इस विषय पर कल चर्चा हुई थी और सार ये है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके धाम से अवतीर्ण होने वाली जो गोपियां हैं वो साक्षात उनकी अंतरंगा शक्ति हैं। उनका देह पूरी तरह से आध्यात्मिक है, जैसे श्री कृष्ण मनुष्य समाज में आकर मनुष्यों की तरह नकल कर रहे थे, उसी प्रकार गोपियां भी कर रही थीं, साधारण गोपी गोप स्त्रियों के समान वृंदावन में। परंतु वे हैं उनकी अंतरंगा शक्ति, उनके पार्षद उनके धाम से। हम ये भी चर्चा कर चुके थे कल कि जो गोपियां श्री कृष्ण के साथ में आईं उनको नित्य सिद्ध गोपियां कहते हैं, और जो गोपियां यहां अनेक जन्मों से साधन भजन करते हुए ऊंचे स्तर को प्राप्त कर चुकी भक्ति में, उनको एक जन्म मिला गोपी के परिवार में वृंदावन में, इनको साधना सिद्ध गोपियां कहते हैं। साधना सिद्ध मतलब जो सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करते हैं अपने भक्ति योग के नियमों का पालन करके, और जब एक बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाता है तो फिर वो इस योग्य हो जाते हैं कि वो वृंदावन में जन्म लें। यदि विशेष करके उनके उस उच्च स्तर की भक्ति में उनकी ये कामना रही हो कि वो भगवान को माधुर्य रस में प्रेम करना चाहती हैं, भगवान को अपने पति रूप में चाहती हैं, तो फिर उनको गोपियों के गर्भ में वृंदावन में जन्म मिलता है। तो ऐसे साधन सिद्ध गोपियां भी थीं। उन्होंने पूर्व जन्मों में अनर्थ निवृत्ति के स्तर को पार किया, निष्ठा के स्तर को पार किया, रुचि और आसक्ति के स्तर को भी पार किया, और फिर जब उनको यहां वृंदावन में गोपियों के गर्भ से जन्म मिला तो जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं और अन्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त हुई गोपियां हैं, उनका संग करके उनको भी प्रेमा भक्ति की अवस्था की प्राप्ति हुई और पूरी तरह से वो शुद्ध हो गईं। जो भी थोड़ा बहुत तनिक मात्र भी जो कलमश था वो भी स्वच्छ हो गया। तो ये साधन सिद्ध गोपियों की अवस्था है। जैसे हम कल बता रहे थे, ये साधन सिद्ध गोपियां अनेक प्रकार की थीं। उनमें से एक वो थी जो उपनिषद आदि की अधिष्ठाता देवी थीं, दूसरी वो थी जो दंडकारण्य के वन में ऋषि थे जिन्होंने श्री रामचंद्र को देखा और उनको अपने आराध्य देव गोपाल या श्री हरि का स्मरण हुआ और उन्होंने चाहा कि वो भी श्री कृष्ण के साथ, भगवान के साथ इसी भाव में संबंध रखें। तो भगवान ने कहा कि मैं एक पत्नी व्रत धारण कर चुका हूं, इसलिए अगले जन्म में आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो उनको गोपियों के गर्भ में जन्म मिल गया। तो ये साधना सिद्ध गोपियां, उनमें से कई ऐसी थीं जो बचपन से ही नित्य सिद्ध गोपियों के साथ में आके ऊंचे प्रेम भक्ति के स्तर को प्राप्त कर चुकी। उनका शरीर बिल्कुल आध्यात्मिक हो गया और वो उस रात को जिसका वर्णन यहां चल रहा है, जब श्री कृष्ण वंशीवट में रह के बांसुरी बजा रहे थे, वो भी नित्य सिद्ध गोपियों के साथ जा पाई वंशीवट। ऐसे भी कई साधन सिद्ध गोपियां थीं जो काफी ऊंचे स्तर पर थीं, लेकिन पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं थीं। जब उनके परिवार के सदस्यों ने उनको रोक दिया, वंशीवट जाने से मना किया, तो उस एक विरह की भावना की अग्नि ने उनके अंदर जितने भी थोड़े बहुत लेश मात्र कलमश बचे थे उनको भी नष्ट कर दिया। वो भी पूरी तरह से शुद्ध हो गई और ऐसे शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में वो भी श्री कृष्ण का संग करने के लिए वंशीवट चली गई। और जो साधन सिद्ध गोपियां रह गई थीं, जिनका अभी तक इस भौतिक देह से थोड़ा बहुत तनिक भी कुछ संबंध था, वो भी श्री कृष्ण का तीव्रता से विरह में ध्यान करने लगी और उस ध्यान से, उस विरह के अग्नि के ताप से उनके जितने भी कलमश हृदय में थे थोड़े बहुत, वो भी निकल गए, नष्ट हो गए। और श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान करने से, भक्ति भाव से, प्रेम से जो आनंद की प्राप्ति उनको हुई, ऐसे आनंद से उनके पूर्व भौतिक कर्म आदि भी नष्ट हो गए। तो जो गोपियां रह गई थीं, वो आगे चल के भी पूरी तरह से शुद्ध हो गई, उनके भी देह पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गए और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं योग माया ने उनको भी भेजा। तो जो भी गोपियां श्री कृष्ण के साथ रासलीला करने के लिए गई थीं, उनके शरीर बिल्कुल आध्यात्मिक था। और जैसा कल भी हम बता रहे थे कि जाते जाते योग माया के द्वारा एक दूसरा शरीर छोड़ गई, तो गोपियों के जो कुटुंब के सदस्य हैं उनको बिल्कुल पता नहीं चला कि हमारी पत्नियां या हमारी बहू, हमारी मां इत्यादि वो कृष्ण के पास चली गई हैं। उनको लगा कि श्री कृष्ण, गोपी, हमारी पत्नी आदि वो हमारे पास ही, हमारे घर में है, हमारे साथ में ही है। तो इस प्रकार से योग माया ने व्यवस्था कर दी। तो ये हैं गोपियां। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि जब हम ये जान जाएंगे कि गोपियां हैं कौन, कि या तो वो नित्य सिद्ध भगवान की पार्षद हैं जो उनके धाम से आए हैं, या सिद्ध अवस्था को प्राप्त किए हुए वो बहुत आगे पहुंचे हुए ऋषि मुनि आदि हैं जो अपने पूर्व जन्म में ऋषि मुनि थे, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और एक श्लोक हम कल बता रहे थे कि न मनुष्यः कथांचना, कि इनको कभी भी मनुष्य नहीं मानना चाहिए, ये मनुष्य जाति के नहीं थे। तो इस प्रकार से ये साधना सिद्ध गोपियां और नित्य सिद्ध गोपियां दोनों श्री कृष्ण का संग करने के लिए रासलीला में गईं, इसलिए दोनों का संबंध, दोनों की लीला क्योंकि वो प्रेमा भक्ति से भी आगे बढ़कर है, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। लेश मात्र में इसमें भौतिकता का कोई लक्षण नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है। तो ये है गोपियां। तो ये चर्चा हम कर रहे थे कल, और इसका थोड़ा विस्तार हमने अभी भी किया और अब थोड़ा बहुत और करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला में शामिल होने के लिए बहुत ही विशेष योग्यता चाहिए, यह स्वाभाविक है। यदि कोई किसी बड़े राजा के बहुत निकट आके रहना चाहता है तो उसे उसके अंदर भी कोई योग्यता होनी चाहिए। कोई भी साधारण व्यक्ति सोचे कि मैं भी राजा का मित्र बन जाऊं, मैं भी राजा के बहुत निकट आ जाऊं, तो यह संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा। बिरला ही कोई ऐसे विशेष व्यक्ति मिलेंगे जो कि राजा के बहुत निकट चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण, जो कि सारे सृष्टि के भौतिक और सृष्टि के राजाधिराज हैं, तो वो जब यहां आते हैं, अवतीर्ण होते हैं भौतिक सृष्टि में, अपने वृंदावन धाम को लेकर आते हैं, तो उनके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, उनके लीला में शामिल होने के लिए, उनसे इतना निकट का संबंध बनाने के लिए क्या कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी? अवश्य। इसलिए हमें जानना चाहिए कि ये सब गोपियां अति योग्य थीं, इसलिए वो कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर पाए। जो कृष्ण के मित्र थे वृंदावन में, ग्वाल बाल, उनके बारे में बताया जाता है, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहरो कृत पुण्य पुञ्जाः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे कई लोग होते हैं जो परम सत्य को निराकार ब्रह्म मानते हैं और उस निराकार की उपासना करते हुए ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, तो ऐसे कई ऋषि मुनि आदि होते हैं। साथ साथ में ऐसे भी कई होते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को प्रभु मानते हैं और अपने आप को सेवक मानते हैं भगवान का। कई ऐसे होते हैं मायाश्रितानाम, इस दुनिया के माया जाल में फंस के उनकी दृष्टि शुद्ध नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है उनके पास, तो वो भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हैं। माया का एक व्यक्ति, माया से निर्मित हुए एक व्यक्ति को जैसे समझते हैं, जैसे कि हम सब हैं। तो वो नहीं जानते थे कि जो श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले जो ग्वाल बाल थे, जो कृष्ण के कंधे पे चढ़ते थे, कृष्ण से इतने निकट से संबंध करते थे, हंसी मजाक करते थे, तो उन्होंने कितने ढेर सारे अनेक जन्मों से भक्ति में पुण्य एकत्र किए होंगे। तो जो कृष्ण के मित्र बन सके वो कितने महान है। अनेक जन्मों से उन्होंने न जाने कितने तपस्या की थी, कितने सारे ढेर सारे भक्ति में पुण्य किए थे, इसलिए तो वो श्री कृष्ण के मित्र बनने के लिए योग्य हो गए। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ये भी कहते हैं, नन्दः किम् अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपोयस्यास्तनं हरिः। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, वो बात करते हैं, या परीक्षित महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे ब्राह्मण, ये बताइए कि नंद महाराज ने ऐसे क्या तपस्या की होगी, श्रेय एवं महोदयम कि उनको उनका भाग्य ऐसे खुल गया कि उनको परब्रह्म श्री कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। ऐसे क्या विशेष पुण्य और तपस्या नंद महाराज जी ने की होगी। और जहां तक यशोदा माता का प्रश्न है, क्या कहना है, उन्होंने स्वयं अपने स्तनों से श्री कृष्ण को दूध पिलाया, तो माता यशोदा ने क्या पुण्य किए होंगे पूर्व जन्मों में, क्या तपस्या की होगी, क्या विशेष कार्य किए होंगे कि उनको ऐसा अहो सौभाग्य मिला। कहने का मतलब है कि माता यशोदा, नंद महाराज और अन्य जो वरिष्ठ गोप गोपियां थीं वृंदावन में, जो कि श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानती थीं या पुत्र के समान मानती थीं, इतना निकट का संबंध उनका था श्री कृष्ण से, भगवान को अपना पुत्र मानना और पुत्र को भगवान को कभी डांटना, छड़ी लेके उनका पीछा करना, बांध भी देना उखल से, ये कोई साधारण व्यक्ति कर सकते हैं? भगवान जिनके माया जाल से सारी दुनिया, जितने भी ब्रह्मांड हैं, वो सब बंधे हुए हैं, यहां तक कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी उनके जाल में हैं, तो ऐसे भगवान को बांधने का अधिकार कैसे व्यक्ति को, किस प्रकार के व्यक्ति को हुआ होगा, उस व्यक्ति की विशेषता कितनी होगी, किस तरह के पुण्य आदि या भक्ति तपस्या आदि उस व्यक्ति ने की होगी कि ये स्थान उस भक्त को प्राप्त हुआ। तो जब ऐसी बात भगवान के मित्रों के लिए वृंदावन में, उनकी माता पिता और अन्य वरिष्ठ गोप गोपियों के लिए की जाती है, तो क्या उन गोपियों का स्थान अति विशेष नहीं होगा, जिन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका समझा, भगवान को अपना पति मान लिया, तो क्या ये विशेष नहीं होंगे? कितने विशेष होंगे, कितने महान होंगे कि उनको स्वयं भगवान के साथ ऐसा एक संबंध स्थापित करने का अवसर मिला वृंदावन में। जो साधन सिद्ध गोपियां हैं, जिनकी चर्चा हम अभी अभी कर रहे थे, उन्होंने अपने भौतिक शरीर को धीरे धीरे पूर्व जन्मों से आध्यात्मिक बना दिया। नित्य सिद्ध गोपियों का शरीर तो पहले से ही आध्यात्मिक था, चिन्मय था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब कोई साधक एक सद्गुरु के आदेश अनुसार साधन भक्ति की विधियों का पालन करना प्रारंभ करता है, तो शनै शनै उसके अंदर जितने भी दुर्गुण होते हैं, अनर्थ होते हैं, वो सब मिट जाते हैं। उसके शरीर की जो भौतिकता है, जो भौतिक गुण है, वो भी कम होने लगता है, क्योंकि वो अपने इंद्रियों का प्रयोग केवल श्री कृष्ण के संबंध में करता है। वो अपनी आंखों का प्रयोग कृष्ण के सुंदर रूप को देखने के लिए करता है, अपने कानों का प्रयोग भगवान से संबंधित कोई ध्वनि को सुनने के लिए करता है, वो अपने जीभ का प्रयोग श्री कृष्ण का प्रसाद का स्वाद लेने के लिए करता है, अपने नसिकों का प्रयोग श्री कृष्ण को अर्पण किए हुए फूलों को सूंघने के लिए करता है। इस प्रकार से अपने समस्त इंद्रियों को केवल श्री कृष्ण के संबंध में ही प्रयोग करता है। तो जैसे जैसे वो अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण के संपर्क में लगा देता है, वैसे वैसे वो इंद्रियां, वो शरीर शुद्ध होने लगती हैं, आध्यात्मिक होने लगती हैं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे एक लोहे को यदि अग्नि में रखा जाए, तो उस लोहे के अंदर भी अग्नि के गुण आ जाएंगे और लोहा भी अग्नि का ही कार्य करेगा। जब हम हमारी उंगली किसी अग्नि में रख देते हैं तो उंगली जल जाती है, तो यदि कोई कहे कि ये लोहे का टुकड़ा भी लोहा है, अग्नि नहीं है, तो उत्तर ये देना चाहिए कि फिर उस लोहे को छूके तो देखो, उंगली जल जाएगी। इसका मतलब है कि लोहा होकर भी वो अग्नि का काम कर रहा है, अग्नि ही है, समझ लीजिए। अग्नि का स्पर्श करने से अग्नि के गुण आ गए उस लोहे के टुकड़े में। ठीक उसी प्रकार से जब कोई साधक भक्ति करते रहता है, तो भगवान के स्पर्श से उसका शरीर भी दिव्य होते जाता है, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। और ऐसे दिव्य होते होते उसके शरीर में जो भौतिकता है वो कम होती जाती है, और व्यक्ति जितना आगे पहुंचा हुआ होता है भक्ति में, जितनी निकट वो प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त हुआ होता है, उतना ही उसके शरीर के अंदर दिव्यता या आध्यात्मिकता बढ़ती है, और उसके शरीर मन बुद्धि आदि में जो भौतिकता है वो घटते जाती है। और अंततः जब शत प्रतिशत वो शुद्ध भक्त हो जाता है, अणुमात्र भी उसके हृदय के अंदर कोई भौतिक कामना नहीं रहती है, तब उसका शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है। तो साधना सिद्ध गोपियों की अवस्था ऐसी थी कि पहले से ही जब उन्होंने जन्म ही लिया था वृंदावन में गोपियों के गर्भ से, वो प्राय पूरी तरह से आध्यात्मिक थी। लेश मात्र अणुमात्र कोई कलमश रह भी गया था तो वो भी श्री कृष्ण के विरह की अग्नि में खत्म हो गया, और उनका भी शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गया। तो प्रश्न ये हो सकता है कि क्या जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शत प्रतिशत आध्यात्मिक हो चुके होते हैं, क्या उनका शरीर नष्ट नहीं होता है मृत्यु के समय? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तर देते हैं कि हां, परंतु इसके लिए दो कारण हैं। भगवान कभी कभी ऐसे अपने शुद्ध भक्तों को भी साधारण दुनिया की दृष्टि में साधारण ही दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्ति के गोपनीयता को बनाए रखना चाहते हैं। और दूसरी बात कि जो नास्तिक लोगों के झूठे गलत सिद्धांत हैं, उनको भी विचलित नहीं करना चाहते हैं। केवल भक्ति श्रद्धालु लोग ही कर सकते हैं। श्रद्धालु लोगों को ही ऐसे दृष्टि हो सकती है कि वो समझ जाएं कि एक शुद्ध भक्त का शरीर भौतिक नहीं है, दिखता है भौतिक, परंतु जब प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त होती है तो वो शरीर भौतिक दिखते हुए भी भौतिक नहीं है, हालांकि भौतिक शरीर की तरह वो कार्य करता है। तो भगवान इन दो कारणों के लिए साधारण दृष्टि के लिए उनको भौतिक ही दिखाई देने देते हैं, परंतु वह आध्यात्मिक। लेकिन कभी कभी भगवान अपने शुद्ध भक्त के ऊंचे स्तर को साबित करने के लिए उस भक्त को उसी देह में अपने धाम में ले जाते हैं। उस देह को त्यागना भी नहीं पड़ता है कभी कभी, बहुत विशेष विशेष अवसरों में। उदाहरण है ऐसे ध्रुव महाराज का, श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। ध्रुव महाराज तो शत प्रतिशत शुद्ध भक्त थे। ऐसे बताते हैं शुकदेव गोस्वामी कि जब ध्रुव महाराज को इस दुनिया को छोड़ के जाने का समय आया तो साधारण व्यक्तियों की तरह उन्होंने अपने प्राण त्याग नहीं दिए, बल्कि वैकुंठ से विमान आया उनके लिए। विष्णुदूत आए कि आइए हमारा, आप विमान में सवार हो जाइए, आपको ले जाते हैं वैकुंठ लोक। और उस वैकुंठ विमान पे आरूढ़ होते समय मूर्तिमान मृत्यु के सर पे उन्होंने अपना कदम डाल के अंदर कदम लिया तो मृत्यु उनको छू नहीं पाई। तो कभी कभी भगवान ऐसे भी करते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों को इसी शरीर में जो हमें आंखों से दिखता है, इसी शरीर को वो ले जाते हैं। लेकिन अधिकतर वो शुद्ध भक्त के शरीरों को भी साधारण दिखाई देने ऐसी योजना करते हैं। तो गोपियों का भी, गोपियों के बारे में भी ऐसे ही है। नित्य सिद्ध गोपियां भी ऐसे नकल करती थीं साधारण महिलाओं की तरह, परंतु वो भी ऐसी लीला कर रही थी। उनका शरीर आध्यात्मिक था और साधना सिद्ध गोपियां, उनका भी शरीर आध्यात्मिक था। तो दोनों आध्यात्मिक वर्ग हैं, श्री कृष्ण एक ओर और गोपियां दूसरी ओर। गोपियों का वर्ग ये भी आध्यात्मिक स्तर पे है, कृष्ण का तो है ही। तो इसलिए जब हम ये समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण कौन है और गोपियां कौन है, तो उनके बीच में जो संबंध है वो स्वाभाविक है कि ऊंचा होगा ही, वो शुद्ध और आध्यात्मिक होगा ही, इसमें कोई दोष नहीं है। तो ये हुआ कौन से नंबर का पॉइंट था, पांचवा या छठा? छठा था। तो अब सातवें बात को बताते हैं कि कभी कभी गोपियों की निंदा लोग करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि भगवान को अपना प्रेमी मानते हैं, क्योंकि लोगों की धारणा रहती है कि भगवान तो हमारे लिए बहुत आराध्य हैं, हमारे लिए पूज्य हैं, तो भगवान के प्रति ऐसी भावना रखना ये तो ठीक नहीं है, ऐसे आम व्यक्ति की धारणा होती है। हाँ, और ऐसे अन्य धर्मों में बात है ऐसे, जैसे कि पहले दिन पे हम चर्चा कर चुके हैं, इस दुनिया में तरह तरह के संबंध पाए जाते हैं। एक तरह का संबंध है, समझ लीजिए कि हम किसी व्यक्ति को बहुत महान समझते हैं। जैसे यहां इस दुनिया में लोग खेल के सितारों को, क्रीड़ा करने वाले, क्रिकेट खेलने वाले लोगों को, या सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्रियों को, या किसी राजनेता को, या किसी बहुत बड़े अमीर आदमी को साधारण व्यक्ति दूर से ही मानता है, व्यक्तिगत रूप से उसकी सेवा नहीं कर पाता है, परंतु दूर से बहुत सम्मान देता है उसको। ये भाव रहता है कि यह व्यक्ति बहुत बड़ा है, सेवा नहीं कर पाता, लेकिन यह महानता की भावना रहती है। तो जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि यहां जो भी भाव पाए जाते हैं वो विकृत रूप है, प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत के, तो यहां ये शांत रस का विकृत रूप है, इसको शांत रस कहते हैं। जब किसी महान व्यक्ति को हम महान ही मानते हैं दूर से, एक ऐसे भाव रहता है। दूसरी बात, एक सेवक और मालिक, ये संबंध भी हम तो अक्सर देखते हैं भौतिक जगत में, कोई सेवा करता है किसी दूसरे व्यक्ति का, तो ये दास्य भाव है। तीसरी बात, मित्रता का संबंध भी यहां पाया जाता है, इसको सख्य भाव कहते हैं, जिसमें और थोड़ी निकटता आती है दोनों के बीच में। चौथी बात, वात्सल्य भाव भी दिखाई पड़ता है, माता पिता और बच्चों का संबंध, और अंत में पति पत्नी का संबंध, प्रेम प्रेमिकाओं का संबंध भी यहां दिखाई पड़ता है भौतिक जगत में। तो यहां जितने भी ये संबंध हैं, ये सब विकृत रूप हैं, क्योंकि भगवान के धाम में ये संबंध हैं, विद्यमान हैं अपनी शुद्ध अवस्था में। आदि रस कहते हैं भगवान के इस माधुर्य रस को, और अन्य रस भी ऐसे ही शुद्ध हैं। तो वो शुद्ध, उन शुद्ध रसों का जब प्रतिबिंब यहां दिखाई पड़ता है विकृत रूप में, वो हम मनुष्य समाज में ऐसे प्रकट करते हैं, ऐसे संबंध अन्यों से रख के। तो भगवान के धाम में भी ऐसे है संबंध, वैकुंठ जगत में। अन्य धर्मों में अधिकतर शांत रस की भावनाएं तक ही सीमित रहते हैं लोग। भगवान को बहुत पूजनीय व्यक्ति हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, कृपालु भी हैं, समस्त सद्गुणों से संपन्न हैं, वो हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं, वो हमारी रक्षा कर सकते हैं, वो सृष्टि करता है। सो ऐसी भावना भगवान के प्रति रहती है, सेवा भावना इतनी विकसित नहीं होती है, तो इसको शांत रस कहते हैं। तो वैदिक सनातन धर्म के अतिरिक्त अनेक जो धर्म है, वो उनमें शांत रस का प्राधान्य पाया जाता है। आगे चल के थोड़ा बहुत दास्य भाव भी मिलता है कि भगवान मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं और उनकी सेवा मुझे करनी चाहिए, ये भावना भी दिखाई पड़ती है। तो अधिकतर शांत और दास रस ही पाया जाता है। जब सनातन धर्म का संबंध है, भगवान विष्णु की भक्ति का संबंध है, नारायण भगवान का, वो वैकुंठ जगत में भगवान नारायण लक्ष्मी देवी के साथ वहां विराजमान रहते हैं, तो वहां पर साधारण भक्तों के लिए शांत और दास रस में संबंध तो है ही है, साथ में एक और आधा संबंध है, अर्ध सख्य। पूरी तरह से मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान नारायण को एक ऐश्वर्य भाव से दूर से देखा जाता है, तो थोड़ा बहुत जो मित्रता का या सख्य संबंध है उसमें इस ऐश्वर्य का मिलावट है, इसलिए इसे गौरव सख्य कहते हैं। अन्य रस वैकुंठ में उपस्थित नहीं है। श्रीमती लक्ष्मी देवी का संबंध नारायण से पति पत्नी का अवश्य है, परंतु उसमें भी एक ऐश्वर्य की भावना, एक थोड़ी सी दूरी है, उतनी निकटता नहीं है। तो इस प्रकार से वैकुंठ में अढ़ाई रस पाए जाते हैं, ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। परंतु गोलोक वृंदावन में, जहां पर मुरली मनोहर, श्याम सुंदर, गोविंद, श्री कृष्ण विराजमान है गोपियों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में, नंद महाराज, यशोदा माता और अन्य वरिष्ठ गोप गोपियों के साथ में, उस गोलोक वृंदावन में पांचों के पांचों रस पूर्णता, परिपूर्णता में उपस्थित हैं। और ऐसे भक्त अनेक हैं, अनगिनत भक्त हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ इन पांचों संबंधों में सेवा करते हैं और इसका रस भी लेते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये कोई धर्म के विरुद्ध नहीं है। यदि कोई भगवान को अपना पति मानना चाहे तो ये धर्म के सिद्धांत के अनुसार है, क्योंकि भगवान ही हमारे सब कुछ है। वैसे भारत के इतिहास में गोपियों के अलावा भी ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जिसमें महान भक्तों ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। द्वारका में 16,108 पठरानियां थीं श्री कृष्ण की, उनका भी संबंध तो श्री कृष्ण के साथ पति पत्नी का था। दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय में, रामानुज जी के संप्रदाय में, उनके पूर्व आंडाल नाम की एक आलवार थी। श्री संप्रदाय में प्रसिद्ध 12 आलवार होते हैं जो उन्मत्त होते थे कृष्ण प्रेम में। इन 12 आलवारों में से एक आंडाल थी, एकमात्र महिला थी इन 12 में से। इनके पिता का नाम था विष्णु चित्त या पेरी आलवार। पेरी आलवार भी आलवारों में से एक थे। वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। उनकी सेवा यही हुआ करती थी कि वो भगवान रंगनाथ के लिए, जो श्री रंगम में विराजमान हैं, उनके लिए फूलों की माला बनाते थे, फूलों का बगीचा संभालते थे। यही उनकी सेवा थी, यही उनका काम था। तो उनकी पुत्री हुई आंडाल, उनका नाम गोदेवी भी रखा गया, वो भूदेवी की अवतार मानी जाती हैं। तो एक भक्ति के वातावरण में बड़ी हो गई आंडाल, और बचपन से ही आंडाल ने ठान लिया, तय कर लिया कि जब मेरे शादी करने का समय आएगा तो मैं रंगनाथ जी को ही, श्री कृष्ण को ही के साथ ही शादी करूंगी, जैसे वृंदावन के भाव में गोपियों का था। और जैसे जैसे आयु बढ़ती गई, जैसे कि स्वाभाविक है, पिता चिंतित होने लगे कि अब मेरी पुत्री का विवाह कराना चाहिए, कोई योग्य वर ढूंढना चाहिए। परंतु आंडाल ने एक नहीं मानी, कहा कि मैं इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी, मैं तो सीधे रंगनाथ जी से ही विवाह करूंगी। तो पेरी आलवर ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, किसी से तो विवाह करना चाहिए, भक्ति कर लो। तो स्वयं रंगनाथ जी पेरी आलवर या विष्णु चित्त के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि हां, मैं चाहता हूं कि आंडाल इस तरह से मेरे साथ में विवाह करे, तो आंडाल को ले आओ श्रीरंगम, तुम्हारे गांव से बड़े धूमधाम से ले आओ। तो पेरी आलवर ने देखा कि स्वयं भगवान का आदेश है, तो पालकी में बिठाकर दुल्हन को जैसे ले जाते वैसे ले आए। और उधर रंगनाथ जी श्रीरंगम के पुजारियों के सामने भी प्रकट होकर कहने लगे कि आंडाल अब आने वाली है, मेरे से विवाह होगा। तो पुजारियों ने भी आश्चर्यचकित होकर तैयारी करना आरंभ कर लिया, और जैसे ही पालकी पहुंच गई, आंडाल इतनी भाव विभोर हो गई थी कि सीधा पालकी से उतर के, कोई यज्ञ वज्ञ की बात नहीं, सीधे चले गई सिंहासन के ऊपर, और ऐसे कहा जाता है कि फिर वो रंगनाथ में मिल गई। तो ऐसे उनकी भावना थी अंडाल की। तो ऐसे और भी कई उदाहरण हैं पिछले 500 वर्षों में भी, जैसे मीराबाई है राजस्थान में, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो यदि कोई भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में देखना चाहते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि ये शुद्ध है, ये परिपूर्ण है। तो इस दृष्टि से भी हमें गोपियों को कभी दोष नहीं देना चाहिए, तो रासलीला को भी कभी कोई दोषपूर्ण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और एक बात जो हम बताना चाहेंगे वो ये है कि श्री कृष्ण ही वास्तव में सबके पति हैं, केवल गोपियों के नहीं, केवल राजमहिषी नहीं द्वारका के, सबके पति हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं और अन्य सब कुछ, जो भी कुछ है और जो भी व्यक्ति हैं, वो सब प्रकृति कहलाते हैं। भगवद गीता के अनुसार भी दो प्रकार के प्रकृति हैं, अपराप्रकृति और पराप्रकृति। अपराप्रकृति मतलब जो निम्न श्रेणी की प्रकृति है, ये भौतिक सृष्टि। तो भौतिक सृष्टि अर्थात महामाया, ये भी प्रकृति है। और यहां जो भी कुछ इस भौतिक सृष्टि में भौतिक है वो प्रकृति है। और पराप्रकृति क्या है? पराप्रकृति आध्यात्मिक जगत है, और आत्मा जो है वो आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक है। आत्मा भी सच्चिदानंद है, चिन्मय है। तो आत्मा का संबंध वास्तव में इस भौतिक सृष्टि से नहीं है। तो आध्यात्मिक शक्ति भी प्रकृति है, क्योंकि ये शक्ति है, प्रकृति अर्थात शक्ति। तो चाहे वो अपराप्रकृति हो या पराप्रकृति हो, दोनों ही शक्तियां हैं भगवान की। और भगवान शक्तिमान हैं, भगवान पुरुष हैं, पुरुष पुलिंग होता है और प्रकृति स्त्रीलिंग होती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति भोग्य है भगवान द्वारा, जो कि भोक्ता है। इसलिए श्री कृष्ण एकमात्र पुरुष हैं और अन्य सब कुछ, चाहे वो भौतिक जगत में हो, आध्यात्मिक जगत में हो, सब भगवान द्वारा ही भोग्य हैं। तो गोपियों की बात तो दूर रही, हम में से सब कोई, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, हम सब भगवान के द्वारा भोग्य हैं, भगवान हमारे पति हैं। इस दृष्टि से तो यहां हमें इस दुनिया के पुरुष स्त्री के संबंध से नहीं देखना चाहिए। आज इस जन्म में जो पुरुष है, हो सकता है पिछले जन्म में स्त्री थी, और अब जो स्त्री है, हो सकता है आने वाले जन्म में पुरुष हो जाएंगे। तो यहां इस भौतिक जगत के पुरुष स्त्री का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम सुन चुके हैं कि दंडकारण्य के ऋषि भगवान के प्रति माधुर्य भाव में सेवा करना चाहते थे। उनका इस दुनिया का देह तो पुरुष देह था, फिर भी वो भाव का अनुशीलन जो उन्होंने किया वो आध्यात्मिक स्तर का था, माधुर्य भाव था। इसलिए ये आठवां कारण हो गया, आठवीं बात हो गई ना, आठवीं बात कि श्री कृष्ण ही सबके पिता है। इसलिए श्री कृष्ण का और एक नाम है जीवपति, सबके पति है वो। अन्य जो भी कुछ है वो सब दुनिया के पति हैं, सब नकली पति हैं। रुक्मिणी देवी जब श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी तो विवाह तो हो गया, उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। एक बार श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी से थोड़ा बहुत मजाक कर रहे थे, तो रुक्मिणी देवी बहुत गंभीर हो गई और गंभीरता पूर्वक अनेक बातें कहने लगी। उनमें से एक ये था, वो कहने लगी कि हे श्री कृष्ण, आप कह रहे हो कि आप योग्य नहीं हो कि मैं किसी दूसरे पति को ढूंढ लूं, क्योंकि आप योग्य नहीं हैं और बहुत सारे योग्य पति होंगे। मैं कहना चाहती हूं कि सारे दुनिया में पति एक ही आप ही है, आप भी सबके पति हैं। तो मैं इस दुनिया के मूछ दाढ़ी वाले पति से, जिसका शरीर, जिसका ये केवल चमड़ा है जिसके अंदर तरह तरह के गंदे वस्तु हैं, ये भौतिक शरीर, ये देह, ऐसे भौतिक देहधारी व्यक्ति से मैं क्यों संबंध रखूं? उनको मैं मेरा पति क्यों मानूं? मैं केवल आपको ही पति मानूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि घर में जाके अब झगड़े हो जाएं कि हमारे पति कृष्ण है आप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है अवश्य कि पति पत्नी और बच्चों को साथ में, सारे परिवार को साथ में मिलकर समझना चाहिए कि हम सबके आराध्य देव श्री कृष्ण ही हैं, और इस दुनिया के संबंधों को हमें बनाए रखना है कृष्णमय रूप में, अपने परिवार के संबंधों को कृष्ण भावनामृत में निभाना चाहिए। पति को यह नहीं समझना चाहिए कि यह परिवार मेरा है, मैं भोगता हूं, परिवार मेरे भोग के लिए है, नहीं। और न ही पत्नी को ऐसे समझना चाहिए, न ही बच्चों को समझना चाहिए, किसी को ऐसे नहीं समझना चाहिए। समस्त जितने भी सदस्य हैं कुटुंब में, उन सबको समझना चाहिए कि हम सब श्री कृष्ण की संपत्ति हैं, कृष्ण ही हमारे पति हैं और उनकी सेवा के लिए ही हमारा अस्तित्व है। तो एक दूसरे के प्रति हमारा संबंध जैसे दुनिया का है वो तो बनाए रखेंगे, परंतु साथ साथ कृष्ण भक्ति में एक दूसरे की सहायता हम करेंगे कृष्ण भक्ति करने के लिए, ये हमारी भावना होनी चाहिए। तो बड़े जिम्मेदारी से हमारे परिवार के जिम्मेदारियों को भी हमें निभाना चाहिए। कृष्ण भक्ति के नाम पर कृष्ण हमारे पति हैं, इसलिए हम पारिवारिक जिम्मेदारियों में लापरवाही करें ये ठीक नहीं है, बल्कि और भी जिम्मेदारी की भावना से इन कर्तव्यों का पालन हमें करना चाहिए कृष्ण भक्ति में। तो ऐसे भक्ति करते करते हमारा भी देह वैसे ही शुद्ध होता जाएगा जैसे हमने चर्चा की थी। श्रीमद् भागवत में ऐसे बताया गया है, भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्र का एक काल है, प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्यु तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, साधन भक्ति विशेष करके, तो ये ऐसे है कि जैसे हम भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं। जब हम भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो धीरे धीरे हम मुंह में भोजन डालते हैं तो तीन चीजें होने लगती हैं एक साथ में। वो क्या है? तुष्टि, हमें संतुष्टि होने लगती है, अच्छा लगता है, हाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन है, अच्छा लग रहा है। दूसरी बात पुष्टि, शरीर का पोषण होता है, ताकत आने लगती है शरीर में। तीसरी बात क्षुदपाय, कि भूख मिटने लगती है। जैसे जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसे वैसे ये तीनों चीजें त्रिक एक काल है, एक ही समय तीनों चीजें होने लगती हैं, और अंत में हम पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं, पोषण भी पूर्ण हो जाता है और भूख भी पूरी तरह से मिट जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रपद्यमानस्य, जब हम शरणागत हो जाते हैं अपने पूरे चित्त से भगवान कृष्ण के चरणों में, तो क्या होता है? तीन चीजें एक साथ हमारे हृदय में होने लगती हैं। भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न होने लगती है, धीरे धीरे से बढ़ने लगती है हमारे हृदय में, आकर्षण बढ़ने लगता है। पर ईश अनुभव, भगवान की उपस्थिति सब जगह दिखाई पड़ती है, भगवान का हाथ हमारे जीवन में अलग अलग घटनाओं में हमें दिखाई पड़ता है, भगवान की अनुभूति हमारे जीवन में ज्ञात होती है। तीसरी बात विरक्तिर अन्यत्र, जो कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है ऐसे चीजों से हम निरासक्त होने लगते हैं, रुचि कम हो जाती है उन चीजों में। भक्ति में आने के पहले भले हमें बहुत चीजों में रुचि हुई होगी, टेलीविजन देखना और बाहर जाके होटलों में खाना, ये करना, बहुत चीजें, सिनेमा देखना, तो अब भक्ति में आने के बाद वो रुचि भी कम होने लगती है। और वैसे वैसे जैसे हम तीव्रता से भक्ति करते रहते हैं, यहां जीते जी भी हमारे शरीर का परिवर्तन भौतिक से आध्यात्मिक होते जा रहा है। हमें श्रद्धा रखनी चाहिए इस बात के बारे में। लेकिन जितना संबंध हम इस भौतिक दुनिया के, इस संसार के भोग से रखेंगे, उतना हमारा उस मात्रा तक, उस हद तक हमारा शरीर भौतिक ही रहेगा। तो यदि हम बहुत दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो शनै शनै हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। जब हम शरीर शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें न केवल स्थूल शरीर परंतु मन, बुद्धि सब कुछ आ जाता है। और ऐसे करते करते एक दिन भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, गुरु की कृपा से हम प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। हमारा शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाएगा और श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाएगा। ये हमारे जीवन का ध्येय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल कथा दोपहर में होगी, कल रविवार है, तो यही कथा आगे बढ़ाएंगे। 8 बातें हम सुन चुके हैं, अब 9वीं से कल शुरू करेंगे और कई बातें हैं सुनने योग्य। तो आपके इस समय यदि आज के प्रवचन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, माइक है इधर, माइक।
हरे कृष्णा महाराज जी।
हरे कृष्णा।
ऐसा हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं कि संत तुकाराम भी अपने इसी देह में वो वैकुंठ चले गए, क्या ये सच है?
ऐसे लोक प्रथा में, ऐसे लोक कथा में ऐसे कहा जाता है, तो हम इसके ऊपर अविश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम इतना इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है इसलिए। परंतु अविश्वास नहीं करते क्योंकि हम तुकाराम को शुद्ध भक्त मानते हैं, उनकी भक्ति की श्रेष्ठता के ऊपर कोई संदेह नहीं है, उनके प्रति पूरा सम्मान है। तो यदि ऐसे हुआ भी होगा तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई अविश्वास करने की बात नहीं है। ठीक है, क्या प्रश्न ये है कि क्या हम इसी जीवन में भगवान के धाम में जा सकते हैं? प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें जाना चाहिए, परंतु जब तक हम उस ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंचेंगे हम नहीं जा पाएंगे। उत्तर है अवश्य हम जा सकते हैं, यदि हमने भक्ति उतने ही तीव्रता से की तो। यदि हम भक्ति में ढीले रहे, आलसी रहे, उत्साही नहीं रहे, तो फिर प्रगति हमारी धीरे धीरे होगी और हमें इस जन्म में संभव नहीं होगा, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा आगे भक्ति को बढ़ाने के लिए। तो पुनः हमें फिर से पाठशाला में जाके आई सीखना नहीं है, तो इसलिए इसी जन्म में हमें परिपूर्ण करने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। प्रश्न ये है कि यदि श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार वैवस्वत मनु के मन्वंतर में 28वें द्वापर युग में अवतीर्ण होते हैं तो अन्य द्वापर युगों में कौन प्रकट होते हैं, कौन अवतीर्ण होते हैं? उत्तर है कि भगवान के अन्य अवतार। भगवान के तो अनगिनत अवतार हैं, वो प्रकट होते रहते हैं हर युग में, द्वापर में भी। लेकिन इस विशेष द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अंडाल की आयु 8 साल गोपी, गोपी की आयु 8 साल की है, तो उनके बच्चे और पति थे, ये कैसे? थोड़े गोपियां 8 साल के ज्यादा भी हुई होंगी थोड़ा बहुत, लेकिन उस जमाने में लोगों का विवाह बहुत जल्दी हुआ करता था, 100 साल पहले तक भी ऐसे हुआ करता था। आजकल ये प्रथा बदल गई है और बहुत देरी से विवाह होते हैं, लेकिन पहले बहुत जल्दी विवाह हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि बंदर राम अवतार के समय में भगवान रामचंद्र जी के सहयोग किए थे, वे भी रासलीला में गोपियों के रूप में आई थी, और भगवान भोलानाथ भी गोपेश्वर महादेव यानी गोपी के रूप में रासलीला में आए थे। जहां तक भगवान शिव जी की बात है, उसकी चर्चा और किसी दिन करेंगे, 2-3 दिन बाद में करेंगे, लेकिन वानर सेना के बारे में ऐसा नहीं कहा गया कि वो भी गोपियों के रूप में आए थे। उनका स्वभाव, उनका जो रस है वो दास्य रस का है, जैसे हनुमान जी का है। हनुमान तो दास्य रस के प्रतीक है, वो श्री राम को अपना प्रभु मानते हैं और अपने आप को श्री रामचंद्र का दास मानते हैं। और यद्यपि हनुमान जी वृंदावन के बारे में जानते हैं और गोपियों का स्थान भी जानते हैं कि कितना महान है, परंतु फिर भी वो अपनी जगह में संतुष्ट हैं। वो केवल भगवान के सेवक ही बनके रहना चाहते हैं। ये आध्यात्मिक जगत की विशेषता है कि जिस रस में भक्त भगवान की सेवा कर रहा हो, जो उसका स्वरूप है, वो उसमें पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। उसे कोई किसी चीज का अभाव नहीं लगता कि वो रस मेरे रस से श्रेष्ठ है तो मुझे वो बनना चाहिए, ऐसे अभाव नहीं होता। पूर्ण परिपूर्णता की का अनुभव होता है उस भक्त को।
हरे कृष्ण महाराज।
हाँ,
आपने बताया कि अगर हम इस जन्म में भगवद्धाम जाने योग्य बन जाएंगे तो हम अपने स्वरूप को पहचान पाएंगे कि हम ग्वाल बाल रूप में, सखा रूप में, गोपी रूप में है।
वो उस समय, कभी कभी जब हम बच्चों को पूछते हैं, वो तीसरी कक्षा में है, चौथी कक्षा में है, तुम आगे बड़े बन के क्या क्या बनना चाहते हो? मैं पुलिस बनना चाहता हूं। कल अगले दिन वो कहेगा, नहीं नहीं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। मतलब वो जो बच्चा कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं है ज्यादा, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, जब समझदार हो जाएगा, 10वीं कक्षा पास कर लेगा, फिर कॉलेज, तब उसको थोड़ा बहुत विचार आएगा कि मैं कहाँ किस लाइन में जाऊंगा, क्या करूंगा, है ना। तो उसी प्रकार से अभी हमारा ये विचार करना कि आगे चल के हम कौन होंगे आध्यात्मिक जगत में, इसका कोई मायने नहीं है इस समय। हमें पहले अपने हृदय को शुद्ध करना है, नहीं तो वही बात हो जाएगी, पुलिस बनेंगे, फायर इंजन चलाने वाले हो जाएंगे, ये बनाएंगे। तो अभी इस समय हमें केवल अपने हृदय को शुद्ध करना है, भगवान के प्रति आकर्षण जागृत करना है, और जब हम परिपक्व हो जाएंगे पर्याप्त मात्रा में, तब भगवान अपने आप सब कुछ प्रकाशित कर देंगे हमारे हृदय में। तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान सारी चीजें संभाल देंगे। यहाँ प्रश्न परे की रस वगैरह का है, तो इसकी चर्चा हम कल परसों करने वाले हैं, तो इस प्रश्न को हम अब नहीं लेंगे। तो ठीक है, अभी अवश्य आप कल आइएगा। अब थोड़ा कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते करते 5 मिनट में दर्शन खुलेंगे, तो हमारे कीर्तन हम जारी रखेंगे उस समय। तो ये भी जैसे किसी ने प्रश्न किया था, तो संकीर्तन ये भी रासलीला से ही अभिन्न है और ये युग धर्म है। संकीर्तन करते करते हृदय का शुद्धिकरण होगा और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नहीं, चल दर्शन खुलने के बाद ऐसे कर लेंगे।